अभी हमारे मध्य आदरणीय आशा दीदी जी पधारे हैं, जिसके लिए कहेंगे वो हमारे संस्था के प्रमुख वक्ता है और जो हमारा हेडक्वार्टर है यहाँ का, उसके मैनेजिंग कमिटी के भी कोर पर्सन है, कोर सभ्य है, और मुख्य तो आप दिल्ली ओआरसी जो 30 एकड़ जमीन में बड़ा विशाल बना हुआ है उसके भी आप डायरेक्टर हो, दिल्ली जॉन के भी हो, और इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी आप वहां शायद कम रहते होंगे लेकिन ऑल इंडिया में भी घूमते और विदेशों में भी जाकर के आप सेवा देते, तो हम समझ सकते हैं कि इतनी सारी जिम्मेवारियां और दूसरी बाहर की सेवा, सब ऑलराउंडर सेवाएं आप करते हो, सब आपको बहुत लाइक करते हैं, चाहते हैं, बोलते ही रहे। तो कई हमारी जो विंग्स है इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस विंग है और आईटी विंग है, उसके भी आप चेयरपर्सन हो, एक नहीं दो दो विंग के वो भी चलाना है, ओआरसी दिल्ली जॉन ये भी चलाना है, और सारी बेहद की सेवाएं और विशेष यज्ञ में भी जब भी बुलाते तब आप आ जाते हो, तो ऐसे अमूल्य रत्न कहो, अमूल्य सेवाधारी कहो, जिसके दिल में सेवा सेवा और साथ साथ तपस्या का भी बैलेंस रख करके ये सेवा कर सकते हैं इतनी सारी, तो आपकी पहचान है दृढ़ता और हिम्मत, आप फ्लाइंग एंजल की तरफ सदा उड़ते ही रहते हो, तो आज आप सभी को भी उड़ाने के लिए कहूं या अपना अनुभव युक्त क्लास का लाभ देने के लिए कहूं, जो आज का विषय है उदाहरण मूर्त उद्धार मूर्त स्थिति, स्थिति बनाना अभी समय के हिसाब से बहुत जरूरी है, अंतिम पेपर में भी पास वही होंगे जिसकी लंबे समय तक ऐसी ऊंची स्थिति में वो स्थित रहते होंगे, तो इस विषय पर आप स्पष्टीकरण करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज का विषय है उदाहरण मूरत और उद्धार मूरत। तो पहले कौन है, उद्धार पहले या उदाहरण पहले, क्या आएगा, उद्धार आएगा या उदाहरण आएगा? उद्धार आएगा। बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनाया है, बेहद का बनाया है, विशाल बुद्धि दी है, त्रिकालदर्शी बनाया है, न केवल यह है परंतु अपना बच्चा बनाकर हर पल सफल करने वाले सफलता मूरत विजयी रत्न भी बनाया है। बाबा उद्धार मूरत, तो उसके बच्चे भी उद्धार मूरत। सो कैसे? बाबा ने हर एक को अपना बनाया, अपनापन दिया। बाबा के सामने कोई भी आत्मा जाती थी तो बाबा को अपना समझती थी, उन्हें ये नहीं लगता था कि ये दिल्ली वालों का बाबा है, बॉम्बे वालों का बाबा है। नहीं, बाबा से अपनेपन की अनुभूति होती थी। वो अपनेपन की अनुभूति वो क्या है, वो कैसे होती है? आप किसी से मिलते हैं तो उसको कहते हैं, भाई आपसे हमको बहुत अपनापन नजर आता है। वो क्या चीज होती है जो अपनापन महसूस होता है? क्योंकि उद्धार करना है तो उद्धार कोई वाणी से तो नहीं होने वाला है, ऐसे दृष्टि दे दें उसका उद्धार हो जाए, ऐसे तो नहीं होने वाला है। जब तक उस आत्मा के अंदर रियलाइजेशन नहीं आती है तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। तो पहला कदम उद्धार मुहूर्त में क्या होगा? अपनेपन की फीलिंग। अब वो अपनापन कैसे महसूस होता है? अपनापन कैसे महसूस होता है बताओ? आप लोग अनुभवी हो, कोई तो आपको ऐसे लगता है उसके आगे सारे अपने दिल की बातें खोल देते हो, और कोई के आगे कहते हो नहीं इससे कोई बात नहीं करना, होता है ना? वो क्या चीज है अपनापन? क्या चीज है? सोचो, सोचो, सोच के बताओ। वो अपनापन कैसे आता है? टीचर्स भी बैठी हैं, बताओ हम कैसे महसूस करें अपनापन? सुनो, अगर मैं ठीक हूं तो हाथ उठा के बताना। जब हम अपने मन और हृदय को, बुद्धि को बिल्कुल शुद्ध रखते हैं सामने वाली आत्मा के कोई इंप्रेशन का प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं देते हैं, तब जब हम बोलते हैं व्यवहार में आते हैं तो उस आत्मा को महसूस होता है अपनापन। मैं ठीक कह रही? ठीक कह रहे तो हाथ खड़े करके बता। ठीक, तो सार क्या निकला? सार निकला, भोलापन चाहिए। भोलापन, माताएं भोली होती हैं। शिव बाबा का टाइटल भोलानाथ है, शिव बाबा का टाइटल चालाकनाथ नहीं है, चतुरनाथ नहीं है, भोलानाथ है। और हम कहते भी हैं भोलों का भगवान होता है, यही कहते हैं। वो भोलापन, वो भोलापन क्या है? वो भोलापन शुद्धता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, जितना जितना हम ये आगे बढ़ाते जाएंगे उतना उतना अपनापन हर एक को अनुभव होगा, हर एक को महसूस होगा ये बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। वो कहेगा नहीं, मुझे ज्यादा प्यार करता है बाबा, सबको एक जैसा करता है। बाबा की विशेषता तो ये है, सबको एक जैसा करता है। लेकिन वो क्यों आत्मा अनुभव करती है? क्योंकि उसके दिल की बात उस स्वच्छ आईने में पहुंच जाती है। बाबा आईना है और उस आईने में कोई दाग नहीं है, बेदाग आईना है। उसमें मेरी परछाई, मेरा अक्ष बहुत क्लियर नजर आता है। इसलिए हमें अपनापन महसूस होता है। अब ये भोलापन लाने के लिए क्या करना है? भोलापन हमारा इमर्ज, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं बड़ा भोला है। बड़ा भोला है, क्यों भोला है बताओ? आप तो माताएं हो, बच्चा भोला क्यों होता है? कोई बच्चे जो हैं वो थोड़े चालाक होते हैं। आप थोड़ी सी आंख दिखाओ, आपके पास आएंगे नहीं। जो दूसरे कई ऐसे बच्चे होते हैं, आप उनको कुछ भी कहो, आंख दिखाओ फिर चॉकलेट तो तुरंत आ जाएंगे। आप माता या अनुभवी हो ना, कोई तो रूठ जाएगा, आप चॉकलेट देंगे फेंक देगा। और कोई ऐसा भोला होता है, अभी आपने उसको थोड़ा सा बोला, अभी अभी चॉकलेट दे तो ले लेगा, भूल जाएगा। भोला उसे कहते हैं जो मन में वैर द्वेष ये नहीं रखता, अपने मन को स्वच्छ रखता है। जिसका अर्थ होता है जो आत्मा जो है जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना। बाबा के सामने कई ऐसे किस्से आते थे। बड़ी बहनें थीं, वो कहती थी बाबा ये व्यक्ति ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बाबा को अच्छा उसका चार्ट बता के जाती थी, ये कितना तंग करता है। जब वो बच्चा सामने आता था, बाबा उसको इतना प्यार देता था, इतना प्यार देता था, वो सब कुछ भूल जाता। बहनें कहती थी बाबा हमने आपको इसके बारे में इतना बताया और फिर भी आपने उसको इतना प्यार दिया। वो प्यार हमारी सिर पर चढ़ के बोलेगा। तो बाबा क्या कहते थे, ये प्यार का अनुभव ही इसको बदलेगा। समझ आई मां? ये जो बाबा से प्यार इसने पाया, यही प्यार इसके बदलने का साधन बन जाएगा। सोचेगा ना कि मैं ऐसा आदमी ऐसी आत्मा, फिर भी बाबा ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो बाबा के प्रति श्रद्धा भी जागेगी, आदर भी जागेगा और परिवर्तन भी लाएगा। उसका उद्धार हो गया ना, उस आत्मा का उद्धार हो गया ना। एक सच्ची घटना सुनाती हूं। एक बार एक सेंटर से एक भाई, बहुत अच्छा था, सब प्रकार का सहयोगी था, लेकिन बहनों के ऊपर बड़ा रोब रखता था। मैं आज से 50-60 साल पुरानी बात बता रहे। तो बहनें उससे तंग भी थीं। पार्टी मधुबन जानी थी तो बहनों ने सोचा ये तो मुख्य भाई है तो कभी भी जा सकता है, तो उसको पार्टी में नहीं लिया। लेकिन वो कहे मैंने जाना है तो पार्टी के साथ ही जाना है। जिद हो गई उसकी, बहने फिर परेशान, कोई बात नहीं आया पार्टी के साथ। तो पार्टी को बाबा से मिलाने के लिए समय निश्चित किया जाता था, बाबा किस टाइम पर मिलेंगे। तो बहन गई, बाबा किस टाइम पर पार्टी को मिलेंगे। तो अगर आपने मधुबन देखा होगा पांडव भवन, तो बाबा के कमरे से लगता हुआ मुन्नी बहन का जो कमरा था ना, उधर एक छोटा सा गेट था, पहले छोटा सा दरवाजा था और उसके बाद गैलरी। तो वो बहन जो थी बाबा से मिलकर के टाइम लेकर के उस गेट से निकल के गैलरी के थ्रू जाने लगी। तो उसने क्या देखा, गैलरी से सामने से वो भाई आ रहा है। तो वो घबरा गई कि अब ये पता नहीं क्या कहेगा। बहन ने अपना रास्ता बदल लिया और वो पीछे प्रेस वाला टेबल है जो, वहां से निकल करके बाहर। अब वो भाई के मन में क्या आया, ये बहन ने जरूर बाबा को मेरी शिकायत लगाई होगी, जरूर लगाई होगी। वो बाबा के कमरे में गया, बाबा को कहा बाबा बहन ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, बहुत कुछ जो भी उसको बोलना था, बाबा मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ, स्वभाव के वशीभूत हूँ। तो बहन ने तो सब कुछ, बाबा कहे नहीं मेरे को तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया बच्चे, बाबा मैं बहुत। तो बाबा ने देखा, विश्व कल्याणकारी है ना, बच्चों का पिता है ना, तो बाबा ने देखा कि वो आत्मा कैसे अपने आप को परिवर्तन करना चाहती है दिल से, लेकिन मजबूर है, शक्ति नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा, नहीं बच्चे तेरे जैसा सर्विसेबल कोई नहीं है। वो हैरान, नहीं बाबा मैं ऐसा नहीं पाऊं, नहीं तेरे जैसा सर्विसेबल कोई नहीं। सच में वे शब्द उसके लिए वरदान सिद्ध हो गए और वो दिन और उसकी जिंदगी का आखिरी दिन वो बहुत सर्विसेबल बन करके रहा। बाबा ने, बाबा जो उद्धार मूर्त है, बाबा बच्चों की कमियों को नहीं देखता, बाबा बच्चों की गलतियों को नहीं देखता। जब बाबा के साथ अव्यक्त रूप से मुलाकात करने भाई बहन आते थे तो बाबा के सामने बैठते थे, कोई कोई का पता होता था कि आत्मा तो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जब वो बाबा के सामने आता था तो बाबा उसको इतना प्यार इतनी शक्ति देते थे, तो बाबा से पूछा, बाबा ये आत्मा ऐसी आपको पता है और फिर भी आप इसको इस रूप में देख रहे हो, फिर भी आप उसको इतना प्यार दे रहे हो, तो बाबा का कहना क्या था? कि बाबा उसके वर्तमान को नहीं देखता, बाबा उसके संपूर्ण स्वरूप को देखता है। संपूर्ण स्वरूप में तो वो आत्मा परफेक्ट है ना, अच्छी है ना, हमारी नजरों के आगे हमारे में और बाबा में क्या अंतर है? यही अंतर है जो हम एक कालदर्शी हैं। एक कालदर्शी समझते हैं ना, केवल वर्तमान को देखते हैं, आज की डेट को देखते हैं, उसके भविष्य को नहीं देखते हैं। एक कालदर्शी बाबा त्रिकालदर्शी है, उसके वर्तमान को नहीं देख रहा है, उसके भविष्य को। हमारे और बाबा उस आत्मा के बीच में तीन पर्दे हैं, जिस कारण भाई भाई परिवार वो हमें महसूस नहीं होता। वो क्या है? पर चिंतन, पर दर्शन और पर संग, पर मत जिसको आप कहते हैं। जब कोई आत्मा सामने आती है, टाइटल है मेरा उद्धार मूरत, लेकिन मैं उसको किस निगाह से देखती हूं, किस दृष्टि से देखती हूं, क्या मैं उसको उतने ही कल्याण भाव से, प्यार के भाव से देखती हूं? क्या कहते हैं आप? सच्चाई से, ईमानदारी से बताओ, जो बिल्कुल उस आत्मा को उसके ओरिजिनल रूप में देखते हैं, उसकी जरा भी कमी कमजोरी नहीं देखते, वो हाथ उठाओ। कितने? 8-10। ये चार्ट हमको ठीक करना होगा, तब हम किसी का उद्धार कर सकेंगे। बाप समान उद्धार मूरत बनना है तो ये चार्ट अपना ठीक करना। मैं कैसे उद्धार करूंगी? हमारे मुख से क्या निकलता है? जो इसके साथ हुआ अच्छा ही हुआ, अपने कर्मों का फल पा रही है, जो करेगा सो पाएगा, इसने इतना किया तो जरूर मिलेगा तो सही ना, ये हमारी भाषा है। हमको इस भाषा को समाप्त करना है। ये भाषा ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, ये भाषा ब्रह्मा की भाषा नहीं है, ये भाषा शिव बाबा की भाषा नहीं है। किसी मुरली में बाबा ने कहा ऐसे शब्द बोले, तो जब बाबा ने नहीं बोले हैं तो मैं कैसे बोल सकती हूं मैं बाबा की संतान हूं, मैं कैसे बोलूं? इसलिए स्वयं को ऊंचा उठा, अपने स्टेटस को देखो, अपनी पोजीशन को देखो, बाबा ने मुझे क्या टाइटल दिए सोचो तो सही, और मैं वो सीट छोड़ करके धरती पर आ जाती हूं। धरती से देखती हूं उद्धार कैसे होगा, उद्धार करने के लिए सामने वाली आत्मा से ऊपर तो होना होगा ना, ऊंचा होना होगा ना, अगर समान है तो उद्धार कैसे करेंगे? तो अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने संकल्पों को ऊंची क्वालिटी का, जैसे रॉयल फैमिली कोई भी अनरॉयल काम नहीं करती, अटेंशन रखती है, आप लोग सब रखते हो, माताएं बैठी हैं यहां, आप सब माताएं बैठे हो, आप सब लो क्लास कुल की मर्यादा रखते हो ना, ये हमारे परिवार की मर्यादा नहीं है, रखते हो? जो माताएं मर्यादा रखती हैं परिवार की वो तो हाथ खड़े करो। अच्छा सब नहीं रखती हैं, हाँ सब नहीं रखती, सब रखती। तो जब मैं लो क्लास रखती हूं, लौकिक कुल की मर्यादा को रखती हूं, तो क्या मुझे पारलौकिक कुल जिसकी मैं मेंबर हूं, फैमिली मेंबर हूं, मैं बाबा की फैमिली की हूं, हम अपने लौकिक फैमिली के कितने नशे में रहते हैं, अरे हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने हैं, बहुत अच्छा, ये नशा है कि मैं पारलौकिक फैमिली शिव बाबा की फैमिली की हूं, ये नशा है। जिनको नशा है वो हाथ खड़े करो, सच सच में, सच सच में खड़ा करना। इस नशे में रहने वाला क्या कभी अपनी सोच को छोटा रख सकता है? इस नशे में रहने वाला, मैं बाबा की, मैं जब शब्द बोल रही हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बाबा की फैमिली की हूं, कम बात नहीं है। जैसे बाबा उद्धार मूरत, मेरा टाइटल भी उद्धार मूरत, आत्माओं का उद्धार करना है। और उद्धार करने के लिए अपनी कल्याणकारी वृत्ति को शिव बाबा का देखें, नाम शिव है, उसका पहला अर्थ हम क्या करते हैं, शिव का अर्थ क्या है, शिव के अनेक अर्थ हैं, पहला अर्थ क्या करते हैं, कल्याणकारी। हम शिव बाबा के बच्चे, हमारी मनोवृत्ति भी सदा कल्याणकारी। पक्की बात माताएं, तब आप देखो आप आत्माओं का उद्धार कैसे करते, बदल जाएंगे। आपके दो शब्दों से बदल जाएंगे, आपकी कल्याणकारी दृष्टि से भी बदल जाएंगे। क्यों कहते हो दृष्टि दो दृष्टि दो? आजकल दृष्टि पर बहुत चलता है, दृष्टि दीजिए दृष्टि दीजिए। क्यों कहते हैं? मैं बाबा की नजरों में ऐसे रहूं जो मेरी दृष्टि में इतनी ताकत आए जो बाबा की दृष्टि में। तब कल्याण होगा। तो तीन पर्दे जो मैंने बताए, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, ये तीन पर्दे, उससे मुझे मुक्त होना, तब मैं उद्धार मूर्त बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। उद्धार मूर्त ही आधार मूर्त है। आप आधार बन जाते हो। पूर्वज है ना, हम सब पूर्वज बैठे हैं। सारे वृक्ष को जल दे रहे हैं शुभ भावनाओं का। आधार मूर्त, जो आधार होता है वो मजबूत होता है। अगर आधार हिलता है तो सारा झाड़ हिलता है, सारी बिल्डिंग हिलती है। तो आधार मूर्त अर्थात जो निराधार है, नोट करिएगा, अगर आप स्वयं आधारित हैं किसी चीज पर किसी व्यक्ति पर, तो आप दूसरों के आधार मूर्त कैसे बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। आधार मूर्त अर्थात जड़ में बैठना, वृक्ष की जड़ में जो होता है वहां से सब तरफ जाती है, खाना पानी वहां से जाता है। अगर जड़ को ये संकल्प आ जाए, आधार मूर्त जड़ को ये संकल्प आ जाए कि सब लोग वृक्ष की महिमा करते हैं, फलों की महिमा करते हैं, फूलों की महिमा करते हैं, इन सब की महिमा करते हैं, मेरी महिमा तो कोई नहीं करता। सच्ची बात है, हम सब क्या कह रहे हैं, इस पेड़ के आम कितने अच्छे हैं, इस पेड़ के ये कितने अच्छे हैं, फूल कितने अच्छे हैं, इस पेड़ का विस्तार कितना अच्छा है। कोई महिमा करता है कि इस वृक्ष की जड़ कितनी अच्छी है? करता है कोई? कोई नहीं करता। मानो जड़ को संकल्प आ जाए कि सब लोग तो पेड़ की महिमा करते हैं, फलों की करते हैं, फूलों की करते हैं, विस्तार की करते हैं, मेरी महिमा कोई नहीं करता। मैं निकल के बताती हूँ कि मेरे कारण से ये वृक्ष है। क्या होगा क्या होगा? वृक्ष नीचे आ जाएगा ना, वृक्ष खत्म हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो आधार मूर्त है उनके अंदर एक विशेष गुण की आवश्यकता है। बताओ, अभी मैंने सारा स्पष्ट किया, कौन से गुण की आवश्यकता है? गुप्त रहना, जितना गुप्त रहेंगे उतना शक्तिशाली रहेंगे। और जब ये संकल्प आएगा, मेरा मान होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे ही होना चाहिए, तो ओम शांति। फिर नहीं होगा। बाबा जब कहता है मुक्त बनो, तो मुझे इन सब चीजों से मुक्त बनना है। ठीक है, नाम मान शान प्रतिष्ठा, नाम लिया जाना, ये हमारा काम नहीं है। समझ आई बात? समझ आई? भट्टी में क्या करेंगे? आधार मूर्त बनो, गुप्त रहना सीखो। सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। कल भी मैंने कहा मेरा नाम लिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो ईर्ष्या पैदा होगी। आधार मूर्त अर्थात जैसा आधार होगा वैसा सारा वृक्ष होगा। आधार स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग में क्रैक पड़ते हैं। आधार ठीक नहीं है तो झूलती मीनार। आधार मूर्त अर्थात जिसका केवल बाबा ही आधार है, कोई व्यक्ति नहीं, बाबा। ठीक है, इसको पक्का करो। कोई आपका साथ निभाने वाला नहीं है, ये जान लो, जान लो। आपका साथ निभाएगा कोई तो आप स्वयं निभाएंगे, बाबा निभाएगा। इसके लिए अशरीरीपन का अभ्यास करो। हमने मम्मा को देखा, हमने बाबा को देखा, हमने दादियों को देखा, गुलजार दादी को देखा, बेड पर है साइलेंस, साइलेंस, गुलजार दादी को सुई लगाते थे, तुम कहते दादी आपको दर्द नहीं होता, दादी क्या कहते थे, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं। दादी अशरीरी रहते थे, और ये पेपर हम सबको पास करना है, सबको पास करना है, तो अशरीरीपन का अभ्यास। आज गुलजार दादी उदाहरण है ना हमारे आगे, जानकी दादी उदाहरण है ना हमारे आगे, मम्मा बाबा उदाहरण है ना, दादी प्रकाशमणि उदाहरण है ना, ये उदाहरण बनना। इस उदाहरण बनने के लिए बाबा कहता है सदा बच्चे याद रखो कि मैं उद्धार मूरत, आधार मूरत हूं तब उदाहरण मूरत हूं। आज हम मधुबन की कितनी महिमा करते हैं, मधुबन में दौड़ दौड़ करके आते हैं, मधुबन के भाइयों की महिमा करते हैं, बाबा भी करते हैं, उदाहरण है ना, हम सब के आगे उदाहरण है ना, ये उदाहरण हमें बनना है। बाबा जो कहते हैं अपने चलन और चेहरे के द्वारा सेवा कर, आपको भाषण करना नहीं आता हर्जा नहीं है, कोर्स कराना नहीं आता हर्जा नहीं है, लेकिन चलन और चेहरे को तो ठीक रखना आता है। उतना कर, बाबा नंबर इस बात के नहीं देंगे तुमने कितनी क्लास कराई, कितने भाषण किए, नहीं, बाबा नंबर इस बात के देंगे कि तुमने अपने चलन और चेहरे से कितना उदाहरण पेश किया, कितनों को इंस्पायर किया। बाबा वो देखेगा, ठीक है, बाबा ये देखेगा। मुझे तो बाबा का एक वरदान जो आज के टॉपिक को सार रूप में एक सेंटेंस में बताता है। हम लोग छोटे होते थे, मधुबन आते थे तो कई प्रकार की सेवाएं करते थे, बच्चे थे ना, पहले तो मम्मा हमारी उसको देखा करती थी, हम लोग चटाइयाँ बिछाते थे, बर्तन रखते थे, पोंछते थे, लगाते थे, खाने की तैयारी करते थे, वो बचपन के सारे खेल हैं, हॉल में जुतियाँ कैसे लगानी है वो सब काम किए हैं, सामने सामने किसको बिठाना है ये सब मनोरदारी सिखाते थे। ऐसे ही मधुबन में धूप वास करने जाते थे, मधुबन में मच्छर बहुत होते थे, तो रात को धूप वास होती है ना वो करने सब कमरों में जाते थे हम लोग, छोटे थे, मधुबन भी छोटा था, सब कमरों में जाते थे, सबसे पहले बाबा के कमरे में जाते थे, तो बाबा के कमरे में करने के बाद बाबा को गुड नाइट करी, अब बाबा दृष्टि दे रहे थे, बाबा ऐसे अपने पलंग पर पांव नीचे करके बैठे थे, तो बाबा दृष्टि दे रहे थे, दृष्टि देते देते बाबा ने कहा, बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। ये बाबा का वरदान कहो, बाबा की शिक्षा कहो, साकार रूप में आखिरी मुलाकात में ये बाबा ने मुझे 68 में, 69 में तो बाबा अव्यक्त हो गए। तो हमको ये ध्यान रखना है, जैसा कर्म मैं करूंगी, जैसा कर्म करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जिसके लिए मुझे पश्चाताप करना पड़े। मेरे मुख से ऐसा कोई बोल ना निकले जिसके लिए मुझे पश्चाताप करना पड़े। मंजूर है ये बात? मंजूर है? पक्का? अब मैं पूछती हूं, जो बातें मैंने कही आप समझते हो ये जरूरी है, हमारे अंदर है और हमको ठीक करनी है, जो समझते हैं ठीक करनी है वो तो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी हाथ उठाए। आप ठीक होने तो आए हैं ना, भट्टी में ठीक होने के लिए तो आए हैं ना, तो भट्टी में अपन को ठीक करने के लिए थोड़ी रियलाइजेशन करें। पहला सवाल, क्या मैंने स्वयं को उदाहरण मूर्त बनाया है? क्या मैं उदाहरण मूर्त हूं? क्या बाबा मेरा मिसाल दे सकते हैं कि बनना है तो ऐसे बनो, जो समझते हैं ऐसा है वो तो हाथ खड़े करो। इसका अर्थ ये हुआ आप संपूर्ण हो, कोई कमी नहीं है। सोच के हाथ उठा, जरूर कोई मार्जिन है तब तो हम यहां है ना। अगर कोई कमी ना हो तो हम भट्टी में क्यों आएंगे? सोचो, मुझे अपने आप को आदर्श बनाना है, जो मेरी दीदी जहां से आप आई हो सारी क्लास को बोले कि बनना है तो ऐसे बन, ये सर्टिफिकेट किसको प्राप्त है वो हाथ खड़े करो। बनना है तो ऐसे बनो। थोड़े ये पुरुषार्थ हमको करना है। और आप क्या सोचेंगे, मुझे अगर बनना है तो कैसे बनू? बाबा जैसे। क्या मैं ऐसी उदाहरण मूर्त हूं जो दूसरों को उमंग उल्लास में ला सकूं? इंस्पिरेशन दे सकूं? क्या मेरा जीवन ऐसा सर्टिफिकेट बन गया है? अगर नहीं तो कितनी मार्जिन शेष है? 50%, 25%, 100%, कितना? और बन गया है तो कितना? कितना मैंने बनाया? दूसरा, उदाहरण मूरत बनने के लिए मुझे अपने अंदर कौन सी धारणाएं मजबूत करनी है? चेक, हर एक की अपनी अपनी होगी। तीसरा प्रश्न, इन धारणाओं में मजबूती लाने के लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूंगी? स्पष्ट हो रहा है ना? चौथा, उद्धार मुहूर्त के लिए मेरी मनसा कहां तक तैयार है? कहां तक तैयार? क्या मेरे अंदर 100% पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता और भोलापन है? है तो कितना? कहां तक है? तीसरा, नेक्स्ट, पांचवा, ऐसे उद्धार मूर्त बनने के लिए 3 पर्दे पर चिंतन, पर दर्शन, परमत, से मैं कहां तक मुक्त हूं? हर एक लिखे, 100% मुक्त हूं, 50% मुक्त हूं। नेक्स्ट, आधार मुहूर्त मुझे कोई आधार तो नहीं है, मेरा कोई आधार तो नहीं है? क्या सच में मैं निराधार हूं? निराधार बनने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास कहां तक हो रहा है? हमारा पक्का ध्येय अशरीरी का है। अशरीरी, जो लाइट का साक्षात्कार होगा अशरीरी बन से होगा, ये शरीर दिखाई ना दे। अशरीरीपन की कहां तक अभ्यासी हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इस पर आप मनन चिंतन करके अपना रिजल्ट खुद निकालना, खुद निकालना। और आज ही निकालना, जो कमी कमजोरी रह जाएगी उसको इस भट्टी में स्वाहा कर। ठीक है, ओके, ओम शांति।